लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आर्थिक याचना करते हैं कि रोबोटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिमता की प्रगति सदैव मानव जाति की सेवा में हो। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारी आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारी आमदर्शन समारोह के अवसर पर वेटिकन प्रेरितिक निवास की पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro cammino di catechesi sulla preghiera, oggi incontriamo la Vergine Maria come donna orante.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। प्रार्थना की अपनी धर्म शिक्षा माला में हम आज कुमारी माता मरियम से भेंट करते हैं, जो प्रार्थना की नारी है। एक साधारण लड़की जिसकी मंगनी दाऊद के घराने से हुई, दुनिया उसे नहीं जानती थी, तब भी मरियम प्रार्थना में नारी थी। हम नाजरेत की उस युवा बाला के बारे में सोच सकते हैं, जो शांति में ईश्वर से निरंतर वार्ता करती है, जिसे एक प्रेरित कार्य की जिम्मेदारी शीघ्र सौंपी जाएगी। वह गर्भ धारण के पहले से ही कृपा से पूर्ण और निष्कलंक है, लेकिन वह अपने आश्चर्यजनक और अति विशिष्ट बुलावा से अनभिज्ञ है, जहां उसे तूफानी समुद्र से पार होना पड़ेगा। एक बात स्पष्ट है कि मरियम हृदय से दीनहीन है, जिसे आधिकारिक इतिहासकार अपनी किताबों में कभी अंकित नहीं करते, लेकिन ईश्वर उन्हें अपने पुत्र को दुनिया में भेजने के लिए तैयार करते हैं। मरियम अपने जीवन को अपनी स्वायत्तता में नहीं जीती है, वह ईश्वर का इंतजार करती है, जिससे वे उनके जीवन की डोर पकड़कर दिशा निर्देशक स्वरूप जहां चाहे संचालित करें। वह अपने में विनम्र है, वह अपनी उपलब्धता में अपने को उस महान घटना हेतु तैयार करती है, जहां ईश्वर दुनिया में सहभागी होते हैं। कलीसिया की धर्म शिक्षा पिता ईश्वर की हितकारी योजना अनुसार उसके निरंतर सेवा में उपस्थिति की याद दिलाती है, जिसे हम उसके संपूर्ण जीवन में पाते हैं। मरियम प्रार्थना कर रही होती है जब स्वर्गदूत गैब्रियल नाजरेत में उसके लिए यीशु के जन्म का संदेश लेकर आते हैं। उसका छोटा अपितु वृहद, मैं प्रस्तुत हूँ, सारी सृष्टि को आनंद से भर देता है। मुक्ति के इतिहास में यह प्रथम प्रस्तुत हूँ दूसरों के लिए विश्वास भरी आज्ञाकारिता का स्रोत बनता है, जहाँ वे अपने को ईश्वर की योजना हेतु खुला रखते हैं।
Non c'è modo migliore di pregare che mettersi come Maria in un atteggiamento di apertura.
अपने को खुले मनोभावों से ईश्वर के सामने प्रस्तुत करने से बेहतर कोई प्रार्थना नहीं हो सकती है। प्रभु, आप जो चाहते हैं, आप जब चाहते हैं और आप जैसे भी चाहते हैं। यह ईश्वर की योजना हेतु हमारे हृदय के खुलेपन को दिखलाता है और यीशु हमारी सदैव सुनते हैं। संत पापा ने कहा कि कितने विश्वासी हैं जो इस तरह की प्रार्थना करते हैं, हृदय से नम्र इस तरह की प्रार्थना करते हैं। वे अपने जीवन की तकलीफों के भरे होने पर भी विचलित नहीं होते हैं, बल्कि सच्चाई का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, यह जानते हुए कि नम्रता और प्रेम में जीवन की परिस्थितियों को चढ़ाना हमें कृपा पात्र बनाता है। प्रभु, आप जो चाहते हैं, जब चाहते हैं और जैसा चाहते हैं, एक साधारण प्रार्थना है, लेकिन इसके द्वारा हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं। संत पापा ने कहा कि हम सभी इस प्रार्थना को कर सकते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन के अशांति भरे क्षणों में शांति लाती है, लेकिन हम अपने में अशांत हैं, क्योंकि हम जीवन में चीजों को अतिशीघ्र पाने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन ऐसा नहीं है, ऐसी अशांति बुराई लाती है, वहीं प्रार्थना अशांति में हमारे लिए शांति का कारण बनती है। यह हमारी अशांति को उपलब्धता में बदल देती है। अपनी अशांति में प्रार्थना करना हमारे हृदय को खोलता है और हम अपने को ईश्वर की योजना से संयुक्त करते हैं। कुमारी मरियम स्वर्गदूत द्वारा दिए जा रहे संदेश के समय भय का परित्याग करती है, यद्यपि उसे इस बात का एहसास होता है कि यह हाँ कितना मुश्किल भरा है।
Se nella preghiera comprendiamo che ogni giorno donato da Dio è una chiamata, allora allarghiamo il cuore e accogliamo tutto.
यदि प्रार्थना में हम इस बात को समझते हैं कि हर दिन हमारे लिए ईश्वर का एक बुलावा है, तो हमारा हृदय बड़ा बनता और हम सभी चीजों को स्वीकार करते हैं। हम यह कहना सीखते हैं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मुझसे यह प्रतिज्ञा कर कि तू हर कदम मेरे साथ उपस्थित रहेगा। संत पापा ने कहा कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें अपने जीवन के हर कदम में अपने साथ रहने हेतु निवेदन करते हैं। वे हमें अकेला ना छोड़ें, हमें परीक्षाओं में ना छोड़ें, अपने जीवन के बुरे समय में ना छोड़ें। हे पिता, हमारे की प्रार्थना में यीशु हमें इस कृपा की मांग करने की शिक्षा देते हैं। मरियम प्रार्थना के माध्यम मृत्यु से लेकर पुनरुत्थान तक यीशु के साथ चली और अंततः प्रथम कलीसिया के उत्पत्ति तक रही। मरियम शिष्यों के साथ प्रार्थना करती है जिन्होंने क्रूस के अपमान को देखा था। वह पेत्रुस के साथ प्रार्थना करती जो भय से ग्रसित दुख के आंसू बहाते हैं। वह उन नर और नारियों के बीच रहती है जिन्हें यीशु ने अपने समुदाय का निर्माण करने हेतु बुलाया था। वह उनके बीच पुरोहित नहीं वरन यीशु की माँ है जो समुदाय के संग प्रार्थना करती है। वह उनके साथ और उनके लिए प्रार्थना करती है। उसकी प्रार्थना पुनः एक बार भविष्य को पूर्णता की ओर ले चलती है जब वह पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा ईश्वर और कलीसिया की माता बनती है। मरियम की प्रार्थना शांतिमय है। सुसमाचार में केवल काना के विवाह भोज में वह बेचारे लोगों के लिए अपने बेटे से निवेदन करती है। वह निवेदन करते हुए अपने बेटे को उनकी मुसीबत दूर करने हेतु छोड़ देती है। हम चेलों के संग उसकी प्रार्थना में उपस्थिति को अंतिम व्यारे की कोठरी में पाते हैं जहां वे पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। इस तरह हम मरिया को कलीसिया की संरक्षिका और माता के रूप में पाते हैं। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा इस बात की चर्चा करती है, अपनी दीन दासी के विश्वास में जो ईश्वर का उपहार है अर्थात पवित्र आत्मा, जिसकी प्रतीक्षा समय से पहले की गई थी, स्वीकृत किया गया। कुमारी मरियम में हम नारीत्व के प्राकृतिक अंतर्ज्ञान को प्रार्थना में संयुक्त पाते हैं। यह ईश्वर की आवाज थी जो उसके हृदय और कदमों को निर्देशित करती, जिसके फलस्वरूप वह जरूरत की घड़ी में उपस्थित हो जाती है। हम माता और शिष्य के रूप में उसकी शांतिमय उपस्थिति को पाते हैं।
मरिया mai dice venite io risolverò le cose no fate quello che lui vi dirà।
वह हमें यह नहीं कहती आओ मैं तुम्हारी तकलीफों का निदान करती हूँ, नहीं वरन तुम ही वह जो कहे वही करो। वह यीशु की ओर हमें इंगित कराती हैं। शिष्य ऐसा ही करता है, वह पहले शिष्य है। मरिया सारी बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर चिंतन करती है। उसके इर्द गिर्द जो घटनाएं घटती वह हृदय में रखकर उन पर चिंतन करती है। वह सारी बातों को अपने हृदय में संजो कर रखती, चाहे वह ज्ञानियों के उपहार हो या मिस्र देश की ओर पलायन और दुख भोग का शुक्रवार। वह सारी बातों को ईश्वर के सामने वार्ता में लाती है। किसी ने मरियम के दिल की तुलना अतुलनीय भव्य मोती से की है जो प्रार्थना में धैर्यपूर्ण ढंग से यीशु के रहस्यों पर चिंतन करते हुए ईश्वर की योजना को चिकनी और ठोस बनाती है। ईश्वर के वचन हेतु खुला रहना, शांतिमय आज्ञाकारी हृदय में उन्हें धारण करना जो कलीसिया का निर्माण करती है, इस भांति अपनी माता की तरह बनना हमारे लिए कितना सुंदर है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
सी नोमेन डोमिनी बेनेडिक्टम
एक्सोग्नुम एट पुस्टुए इन सेकुलुम
एटेरी नोस्ट्रुम इन नोमिने डोमिनी
क्वि फेट इन चेलुम इन टेरा
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन स्थित प्रेरितिक आवास के पुस्तकालय से ऑनलाइन बुधवार ये आम दर्शन समारोह के दौरान इटली के सभी विश्वासियों का सौहार्दपूर्ण अभिवादन किया और कहा, आज हम वाटिकन में संत पेत्रुस महागिरजाघर और ओस्टियंस के संत पौलुस महागिरजाघर के समर्पण का पर्व मनाते हैं। यह समारोह गिरजाघर के अर्थ को उजागर करती है। इस पवित्र इमारत में सभी विश्वासी ईश्वर की स्तुति करने एकत्रित होते हैं। यह त्योहार हम में इस बात की जागरूकता पैदा करती है कि हर विश्वासी ईश्वर का जीवित मंदिर है। साथ ही संत पापा ने अंग्रेजी बोलने वाले और अरबिक बोलने वाले विश्वासियों का अभिवादन कर अपने मृत प्रियजनों के लिए प्रार्थना जारी रखने हेतु प्रेरित किया। संत पापा ने कहा, मैं आपका सौहार्द पूर्वक अभिवादन करता हूँ। इस नवंबर महीने में हम अपने मृतक प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी मृतकों के लिए अपनी प्रार्थना जारी रखें कि प्रभु उन पर दया करें और स्वर्ग के राज्य में उनका स्वागत करें। आपके और आपके परिवारों के ऊपर मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के आनंद और शांति का आह्वान करता हूं। उधर एंग्लिकन महाधर्माध्यक्ष जस्टिन बेल्वी ने वाटिकन मीडिया के साथ महामारी के कारण ख्रिस्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करते हुए कहा, विश्वव्यापी फ्रतेली तुती का पारिस्थितिक महत्व और दक्षिण सूडान में शांति के लिए उनकी उम्मीदें हैं। ठीक एक साल पहले 13 नवंबर 2019 को कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष जस्टिन बेल्वी ने वाटिकन में संत पापा फ्रांसिस से मुलाकात की थी। इस छोटे अंतराल में महामारी के कारण वैश्विक स्थिति में काफी बदलाव आया है। हालांकि कोविड-19 के नाटकीय आगमन ने केवल एकजुटता, पारिस्थिति की धार्मिक स्वतंत्रता और शांति जैसे विषयों के महत्व को सुदृढ़ किया है, बल्कि रोम के धर्माध्यक्ष और एंग्लिकन समुदाय के धर्माध्यक्ष दोनों के साथ विशेष प्रतिध्वनि पाया है। उनकी सबसे हालिया बैठक के एक साल बाद और फ्रातेली तुती के प्रकाशन के एक महीने बाद महाधर्माध्यक्ष जस्टिन बेल्बी ने वाटिकन न्यूज को एक विस्तृत साक्षात्कार दिया, जिसमें वर्तमान में दुनिया के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में बातें की। उन्होंने इस क्षण ख्रिस्तियों के योगदान पर अपना विचार प्रकट किया, जो महामारी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। वैश्विक महामारी के कारण भय और पीड़ा में आशा को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक नेताओं के उत्तरदायित्व के बारे में पूछे जाने पर महाधर्माध्यक्ष जस्टिन ने कहा कि मौलिक रूप से हमारी आशा यीशु मसीह में है, कल, आज और हमेशा के लिए। कलीसिया का नेतृत्व करने वालों का कार्य कठिन समय में आशा की गवाही देना है। यीशु एक ऐसी दुनिया की आशा नहीं करते थे जहां चीजें सब कुछ ठीक चल रही थी, लेकिन एक नाजुक, क्षतिग्रस्त और पापी लोगों से भरी दुनिया में यीशु हमसे कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वे ही हमारी आशा हैं। यह पूछे जाने पर कि संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र फ्रतेली तुती किस तरह से उन्हें प्रभावित करती है, महाधर्माध्यक्ष जस्टिन ने कहा, फ्रतेली तुती एक गहरा मार्मिक दस्तावेज है और एक बेहतर भविष्य की दुनिया के लिए एक व्यवस्थित महत्वाकांक्षी दृष्टि प्रदान करता है। इसके केंद्र में मसीह हैं। यह एक पत्र भी है जो मानवता के विस्तार और जटिलता को गंभीरता से लेता है। संत पापा ने प्राधिधर्माध्यक्ष और ग्रैंड इमाम के साथ अपनी सभाओं के संदर्भों के साथ साथ महात्मा गांधी से भी प्रेरणा ली है। वे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और महाधर्माध्यक्ष डेस्मंड टूटू के संदर्भ में बताते हैं कि उनकी दृष्टि केवल कैथोलिकों के लिए नहीं है, लेकिन पूरी मानवता के लिए है। यही एक कारण है कि उनकी दृष्टि महत्वाकांक्षी और सम्मोहक दोनों है। संत पापा फ्रांसिस व्यक्तिगत जीवन से लेकर बहुराष्ट्रीय जीवन, परिवार से लेकर वाणिज्य और उद्योग की दुनिया या राजनीति की दुनिया के सभी पहलुओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उधर मंगलवार को कैथोलिक महिला संगठनों के विश्व संघ WUCWO द्वारा आयोजित एक वेबिनार के माध्यम से ख्रिस्तियों को संत पापा फ्रांसिस की नवीनतम विश्व पत्र फ्रतेली तुती की भावना को गहराई से अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया गया। लोक धर्मियों के सुसमाचार प्रचार हेतु बने धर्म संघ के प्रीफेक्ट कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले ने ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र का नेतृत्व किया। सत्र को कैथोलिक महिला संगठन के फेसबुक के माध्यम से लाइव स्ट्रीम किया गया था। इस सत्र में भागीदारी न केवल दुनिया भर के WUCWO के सदस्यों के लिए खुली थी, बल्कि आम जनता के लिए भी थी। कार्डिनल टागले ने कहा, फ्रतेली तुती की विशेषता यह है कि यह दो अन्य विश्व पत्रों के साथ एक तीसरे का निर्माण करता है। ये तीनों असीसी के संत फ्रांसिस की स्मृति द्वारा एकीकृत हैं। पहला एवांजेली गौडियम संत फ्रांसिस द्वारा कलीसिया के पुनर्निर्माण के लिए ईश्वर से प्राप्त अनुरोध से प्रेरित है। संत पापा फ्रांसिस ने इस विचार को प्रतिध्वनित किया जिसमें 21वीं सदी में सुसमाचार की खुशी के माध्यम से कलीसिया को फिर से बनाया गया है। दूसरा लौदातो सी, हमारे सामान्य घर की देखभाल में हमारे साझा उत्तरदायित्व को रेखांकित करता है। तीसरा विश्व पत्र फ्रतेली तुती हमारे सामाजिक मित्रता और एक दूसरे के भाई बहन होने के लिए आमंत्रित करता है। कार्डिनल तागले ने कहा कि संत पापा फ्रतेली तुती में एक कार्य प्रणाली को अपनाते हैं जिसमें पहला है पढ़ना और स्थिति का विश्लेषण करना, वर्तमान दुनिया का संकेत और रुझान। दूसरा है विश्वास के प्रकाश में वर्तमान समय की व्याख्या, चिंतन के साथ निर्णय लेना और तीसरा है एक ऐसी दुनिया का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना जो सभी के रहने के लिए एक बेहतर जगह बने। अंतिम कदम हमारे भाई बहनों की सेवा में कलीसिया की प्रतिबद्धता है। कार्डिनल तागले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विश्व पत्र वर्तमान दुनिया में वर्तमान संकेतों पर ध्यान देने के लिए कहता है, विशेष रूप से भाईचारे की कमी। यह हमें ईमानदार होने के लिए भी कहता है कि ये संकेत अक्सर छिपे हुए हैं और मानव परिवार में हो रहे विनाश को खूबसूरती से छिपा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि गरीब और उपेक्षित इस फेकू संस्कृति में सबसे अधिक पीड़ित हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।